मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। एफईआईएस के आज 13 दिसंबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं कर्मो देवी का जो हिसार हरियाणा से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 15 से 29 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मैं नियमित तौर पर कुछ सूचनाएं आप सबको दिया करता हूं। तो कुछ सूचनाएं इस प्रकार हैं, कल और परसों डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन कल यानी कि सैटरडे को आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी जैसे कि वो मिलती रही हैं, और साथ ही आपको योजना के दो आर्टिकल मिलेंगे, एक हिंदी और एक इंग्लिश में। कुरुक्षेत्र के भी आपको दो आर्टिकल मिलेंगे, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, और एक साप्ताहिक प्रश्न आपको प्रोवाइड किया जाता है, वीकली क्वेश्चन, जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं एग्जामिनेशन के लिए, अभ्यास के लिए जो आपको ये प्रश्न उपलब्ध कराता हूँ, इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं उन्हीं को लूँ और उसकी फ्रेमिंग भी कुछ इस तरीके से करूँ कि आपको मेन्स के प्रिपरेशन में मदद मिल सके। और इसके साथ ही हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उन्हें स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं, आप जानते हैं कि स्पेन के मैड्रिड में जलवायु सम्मेलन चल रहा है, उससे संबंधित कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य अभी तक सामने आए हैं जो मुझे एग्जामिनेशन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, उनके बारे में चर्चाएं करूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को, समाचारों को देख लेते हैं। अखबार आज के भरे पड़े हैं, न्यूज चैनल्स पर भी आपने देखा, न्यूज में भी है कि असम की क्या स्थिति हो गई है, और ये लग भी रहा था कि जैसे ही ये नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होगा, नो डाउट, हालांकि देश के कई दूसरे राज्य भी इसका विरोध कर रहे थे, जो विपक्षी दल हैं वे भी कुछ मुद्दों को के आधार पर इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन ये लग रहा था कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो इसका सबसे ज्यादा विरोध करेगा और उसमें असम सबसे आगे रहेगा। और उसके कारण क्या हैं आपको मैं बता चुका हूं, क्योंकि वहां के लोगों को जो सबसे ज्यादा डर लग रहा है, जो एक स्वाभाविक भी है देखिए, वह यह कि हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो देखते हैं कि सरकार इसका क्या रास्ता निकालती है, स्थिति अभी गंभीर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो अभी आक्रोश है ये चीजों को, तथ्यों को बहुत सही तरीके से न समझने के कारण हो सकता है, या इसके पीछे राजनीतिक शक्तियां भी काम कर सकती हैं, कुछ दूसरे किस्म की ताकतें भी होती हैं जो इन सब चीज़ों को हवा देती हैं। अब जैसे जैसे घटनाएं स्पष्ट होती चली जाएंगी, साफ होती चली जाएंगी, तो जरूरत हुआ तो इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन यहां एक प्रश्न जरूर बन रहा है कि क्या कारण है कि नागरिकता संशोधन विधेयक का सबसे अधिक विरोध उत्तर पूर्व भारत में और खासकर असम में हो रहा है, इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। दोस्तों, अखबारों में आपने ये भी पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो अयोध्या जन्मभूमि, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर के पुनर्याचिकाएं दायर की गई थी, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया गया था, और उस डिसीजन के खिलाफ, आप खिलाफ क्या मतलब, पुनर्विचार याचिका की आप अपने इस निर्णय पर फिर से विचार कीजिए जो दायर की गई थी, संविधान की जो पीठ थी उसने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है कि नहीं, इसमें अब पुनर्विचार करने जैसी कोई बात नहीं रह गई। आपको ध्यान होगा कि जब पुनर्विचार याचिकाओं के बारे में बात हो रही थी तो मैंने आपसे एक तथ्य कहा था कि नहीं लगता है कि पुनर्विचार याचिकाएं स्वीकार की जाएंगी, क्योंकि अब कहने के लिए कुछ विशेष नहीं रह गया है, बहुत विस्तार के साथ इसकी सुनवाई की गई है, नए तथ्य नहीं रह गए हैं, ऐसी स्थिति में शायद ही पुनर्विचार याचिकाएं स्वीकृत की जाएं। और यहां पर देखिए दो चीजें हैं, एक तो पुनर्विचार याचिका दायर की गई, अस्वीकृत कर दी गई, मामला खत्म हो गया, एक स्थिति। दूसरी स्थिति यह हो सकती थी कि पुनर्विचार याचिका दायर ही न की जाए, तो जो दूसरी स्थिति अगर दायर नहीं की गई होती तो उससे क्या है कि ये जो दो धार्मिक वर्ग हैं, हिंदू और मुस्लिम, डेफिनेटली इनके बीच जो समरसता की स्थिति होती वो पहले से भी ज्यादा बेहतर होती है। ठीक है, विवाद का निपटारा हो गया और एक समरसता की, एक बहुत अच्छी स्थिति की संभावनाएं बन गई हैं, लेकिन अगर दायर नहीं की गई होती तो वो और भी ज्यादा मजबूत होती, और भी ज्यादा गहरी होती। लेकिन चलिए, पुनर्विचार याचिकाएं दायर करना अधिकार है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संगठन का, और उन्होंने अपने ढंग से सोच करके दायर किया तो हम उन्हें गलत नहीं ठहरा सकते। लेकिन अब ये स्थिति है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था इस मामले को लेकर के, वो अब फाइनल हो चुका है। अब उसमें किसी तरह के किसी प्रकार के संशोधन या संदेह की गुंजाइश नहीं रह गई है। दोस्तों, एक शब्द है नाविक, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, और ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ये नाविक क्या है? ये नाम हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। नाविक बेसिकली भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। मैं रिपीट कर रहा हूं, भारतीय भारत का है, क्षेत्रीय एक क्षेत्र विशेष का है, नौवहन यानी कि नेवी उपग्रह सैटेलाइट प्रणाली, इंग्लिश में आप कहेंगे इंडियन रीजनल नेवी सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS। देखिए, जब भी कभी इस तरह के शब्द आए तो उन्हें आपको बहुत इत्मीनान के साथ पढ़ना चाहिए, दोहराना चाहिए, उसी समय दिमाग में रखने की कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादा बेहतर होगा कि दो चार बार उसे लिख भी लें, बीच बीच में और आगे चल करके कहीं दोहराएं इसको, ताकि दिमाग में आपकी ये बैठ जाए। और इस तरह की चीज़ें प्री एग्जामिनेशन में ज़्यादातर पूछ भी ली जाती है। अभी ये खबर खासकर इसलिए आई है कि जो अमेरिका है, अमेरिका की जो नौवहन प्रणाली है, वो भारत के साथ सहयोग करने के बारे में अपनी स्वीकृति देने वाली है। ऐसी संभावना बन गई है कि वो भारत के जो नौवहन पर प्रणाली है, जो नाविक है, उसके साथ अपना सहयोग करेगी। और सहयोग के रूप में क्या है कि दोनों एक दूसरे के डेटा का आदान प्रदान करेंगे। ये हमारे नौवहन, जो हमारी जो नेवी फोर्स है, आप कह लीजिए कि जो नौसेना है, उसके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें इस तरह के सिस्टम लगे हुए हैं कि वो दूसरे जो जहाज होंगे उनके लोकेशंस वगैरह के बारे में जानकारी दे सकेगी। तो नाविक के बारे में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह है मैड्रिड जलवायु सम्मेलन पर। देखिए, मैड्रिड जलवायु सम्मेलन समाप्त हो चुका है, उसके क्या निष्कर्ष होंगे उसके बारे में अब हमें आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे, एडिटोरियल कमेंट्स मिलेंगे, थोड़े थोड़े आने भी लगे हैं, उस पर हम विस्तार से बातें करेंगे आगे चल करके, यदि संभव हुआ तो। लेकिन यहां जो कुछ निष्कर्ष हैं, जो आपके जो पर्यावरण का जो टॉपिक है, एनवायरमेंट का, उसके लिए जो बहुत ही मददगार हो सकते हैं, उस विषय को बहुत अपडेट कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल अद्यतन बना सकते हैं, उनको ध्यान में रख करके मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात तो देखिए कि इसी समय भारत ने जो बात कही है वो ये है कि 3 साल के दौरान भारत ने 67 गीगावाट, मतलब 3 सालों में, जो आने वाले 3 साल हैं, उसमें भारत सौर ऊर्जा के उत्पादन में 67 गीगावाट की और क्षमता हासिल कर लेगा। 67 गीगावाट। आपको ध्यान होगा कि पेरिस जलवायु सम्मेलन पर के मसौदे पर जब हमने हस्ताक्षर किया था, तो हमने 175 गीगावाट के बारे में वायदा किया, जिसमें 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का था, 100। तो उसमें से हमने 33 हासिल कर लिया है। अभी हम 33 गीगावाट जो बिजली है वो सौर ऊर्जा से उत्पादित कर रहे हैं। 67 हम 3 साल में और हासिल कर लेंगे, यानी कि हम लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। एक बात और भी कही गई है, और ये मैड्रिड सम्मेलन में ही बताई गई है, मैं इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं। एक बात और भी कही गई है कि भारत बकायदे जो उसने वायदा किया है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है, अपनी उस रिक्वायरमेंट का 40% वो जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल जिसमें आपको मालूम है कि सौर ऊर्जा है, जिसमें पवन ऊर्जा है, जिसमें जैव कचरे से प्राप्त ऊर्जा है, ज्वार भाटे से ऊर्जा है, इन माध्यमों से हम 40% अपनी आवश्यकता की बिजली उत्पादित कर लेंगे। इसका मतलब है कि जो कोयले पर जो हमारी निर्भरता है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और आज हमारी कोयले पर बहुत ज्यादा निर्भरता। आप देखिए कि बिजली उत्पादन के जो ज्यादातर हमारे संयंत्र हैं वो कोयले पर आधारित है, और कोयले से सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जित होता है। तो इस प्रकार से भारत लगातार, आप यूं कह लीजिए कि अपनी स्थिति को बेहतर बनाता जा रहा है जहां तक पर्यावरण का संबंध है। आपने ये भी महसूस किया होगा कि जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी इंटरनेशनल फोरम पर जाते हैं तो 2-3 इश्यूज पर हमेशा बात करते हैं, जिसमें एक होता है पर्यावरण, दूसरा होता है वैश्विक आतंकवाद, हमेशा इसको लेकर के बात करते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि अभी जो COP25 जो मैड्रिड में जो सम्मेलन चल रहा है, इसे हम COP25 कहते हैं, इसमें एक इंडेक्स जारी किया गया है, ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए। इस इंडेक्स का नाम है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंजेस परफॉर्मेंस इंडेक्स। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि भारत को उन 10 देशों में रखा गया है, टॉप के 10 देशों में रखा गया है जो लगातार कार्बन के इमिशन को, उत्सर्जन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, एक वैश्विक स्तर पर आप कह लीजिए कि एक गर्व की बात है कि भारत ने पेरिस सम्मेलन के बाद जो वायदा किया है उस वायदे पर लगातार काम कर रहा है और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। और मजेदार बात यह कि इस इंडेक्स में जो अमेरिका का प्रदर्शन है वो सबसे खराब बताया गया है। और आपको मालूम है कि अमेरिका ने ट्रंप साहब के आने के बाद अमेरिका ने अपने को इस पेरिस सम्मेलन से बाहर भी कर लिया है, वो इसमें शामिल नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि अगर हम अपने यहाँ कार्बन का उत्सर्जन कम कर देंगे तो हमारे यहाँ जो औद्योगिक चीज़ें हैं उन पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। और आपको मालूम है कि आप ग्रेटा का नाम आपने सुना है, अच्छी तरह जानते हैं, जो स्वीडन की हैं और जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त भाषण दिया था यहाँ जब यूएनओ का सम्मेलन हुआ था जलवायु पर, और इसके बाद वो एकदम से स्टार बन गई। ट्रंप साहब ने अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि कुछ ऐसा कहा कि ग्रेटा तुम इन सब चक्रों में मत पड़ो, अपने दोस्त के साथ जाकर के फिल्म देखो। तो अगर ट्रंप साहब ये कह रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि जलवायु के प्रति उनमें कितनी गंभीरता है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, उनको कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, इसे समझा जा सकता है। तो अमेरिका का प्रदर्शन इसमें बहुत खराब रहा है। दोस्तों यहां ग्लेशियर के बारे में भी रिपोर्ट आई है, जेट स्ट्रीम के बारे में भी रिपोर्ट आई है, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनवायरमेंट के टॉपिक की दृष्टि से। समय की कमी के कारण मैं इस पर बात नहीं कर पा रहा हूं, आगे यदि कभी संभव हुआ तो मैं बात करूंगा। लेकिन एक तथ्य मैं जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दोस्तों इस मैड्रिड सम्मेलन में एक संगठन है, कह लीजिए ग्लोबल इन्वेस्टर स्टेटमेंट, एक जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं ना, जो दुनिया के देशों में इन्वेस्ट करते हैं, उनका एक संगठन है। आप समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, है ना, एज इट इज मत लीजिए, समझाने के लिए। तो ये जो निवेशक हैं, इन निवेशकों ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि भैया ये करना चाहिए। अब देखिए जो निवेशक हैं ये उद्योगपति हैं, है ना, उद्योग लगाते हैं, और सबसे ज्यादा जो उत्सर्जन होता है कार्बन का वो उद्योगों के कारण होता है या वाहनों के कारण हो रहा है। तो देखिए ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, 4 पॉइंट दिए हैं कि सरकारों को ये करना चाहिए, और भी पॉइंट दिए होंगे, मैं सबसे इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट आपको बता रहा हूं। और ये 4 पॉइंट आपको इस हिसाब से नोट कर लेने चाहिए कि अगर एनवायरमेंट या क्लाइमेट चेंज में क्या सुधार किया जाए, क्या उपाय करने चाहिए, क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस तरह का अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें आप इसे शामिल कर सकते हैं। उन्होंने 4 बातें कही। पहली कि सभी देशों को खनिज ईंधन का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। खनिज ईंधन जब हम कहते हैं तो पेट्रोलियम है, ये सारे के सारे कोयला पर आधारित संयंत्र, इनका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में वो आए। दूसरा उन्होंने कहा कि सरकारों को चाहिए कि इस पर जो ये सब्सिडी देते हैं वो सब्सिडी बंद कर दें। जब सब्सिडी बंद कर देंगे तो होगा क्या कि ये जो बिजली है ये महंगी हो जाएगी, जब बिजली महंगी हो जाएगी तो लोग इसका उपयोग करना कम कर देंगे, तो सब्सिडी देना बंद कर दें। तीसरा उन्होंने कहा कि जो कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं उन पर सरकार भारी जुर्माना लगाए, तर्क संगत हो लेकिन जुर्माना लगाए, तो जब जुर्माना का डर होगा तो लोग इसका उत्पादन थोड़ा सा कम करने लगेंगे। जैसे मान लीजिए कि गाड़ियां हैं, गाड़ी आप पेट्रोल से भी चला सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी आ जाती है तो ठीक है आप पेट्रोल पर चलाइए तो उस पर आपको जुर्माना लगेगा, आपको इतने पेट्रोल पर इतना ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा, तो लोग इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा। और चौथा जो पॉइंट कहा उन्होंने ये कहा कि जितने भी देश हैं वो उत्सर्जन के बारे में जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किए हैं और बिना किसी दबाव के किए हैं, खुद ही उन्होंने उसका फैसला किया है, उसको पूरी तरह से पूरा करने की कोशिश करें, बल्कि बेहतर होगा कि अपने उस लक्ष्य को थोड़ा सा बढ़ा भी दें। ये उन्होंने 4 पॉइंट कहे हैं, मैं 4 पॉइंट रिपीट कर रहा हूं। पहला, खनिज ईंधन का इस्तेमाल बंद करें। दूसरा है कि सरकारें इन पर दिए जाने वाले सब्सिडी को खत्म कर दें। तीसरा यह है कि जो भी कार्बन उत्सर्जित कर रहा है उस पर तर्क संगत जुर्माना लगाया जाए। और चौथा यह है कि जो देश अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उत्सर्जन को कम करने का, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी कर दें और उस लक्ष्य को हासिल करें। तो ये 4 जो पॉइंट हैं ये ग्लोबल इन्वेस्टर स्टेटमेंट में कहे गए हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो दोस्तों आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, जिनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं सोनम तिवारी, ललिता गंगवार बरेली उत्तर प्रदेश से, और राम कुमार पांडे गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। मित्रों, आप जानते हैं आज शुक्रवार है, दो दिनों तक अब आप सबसे मुलाकात नहीं हो सकेगी, और चूंकि मुलाकात नहीं हो सकेगी तो बातें भी नहीं हो सकेंगी। चलिए अच्छा है, आप भी आराम करें, अपने बचे खुचे काम पूरे करें, और फिर अपने आप को इन दो दिनों के बाद जो दिन आएगा उसके लिए पूरी तरह से ऊर्जावान बना लें। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।